October 11, 2006, evening class.
श्री गुरु गौरांग संघाधिका राधा पिताजी जी के कृपा से आज हम लोगों के ब्रजमंडल चौरासी कोष्ठी परिक्रमा चतुर्थ दिवस आचरण निर्देश रूप से संपन्न हुआ। आज बड़ी लंबी यात्रा थी और वह 6 बजे का साथ सभी लोग आ गए और बंगाली यात्री शायद नहीं है, लांत हो गया केवल विदेशी भक्त लोग। अब तक हमने नागपुर के साथ जर्मनी में बताया था चैतन्य महाप्रभु के पहले किसी भी आचार्य ने रससुर भक्ति की व्याख्या नहीं की। शिरु हृदय प्रभु शक्ति संचारी सर्व तत्व निपुर प्रवीण कर नरूपाणी के हृदय में अपनी कृपा बिंदु संचारित की, इसे वो चैतन्य मनोभीष्ट को स्थापित किया। इसलिए उन्होंने रूप गोस्वामी की कृपा के बिना भक्ति के रस स्वरूप में अनुभूति नहीं होती। और तो क्या, उनके कृपा के बिना भक्ति में प्रवेश नहीं होगा, भक्ति तो बहुत सुख है। अब श्री चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कृष्ण स्वयं पराब्रह्म है, वे अपनी स्वेच्छा से भक्तों के हृदय में अपनी नाम रूप लीला इत्यादि को उनके कृपा के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए जब उनकी कृपा तो भक्तों के हृदय में वे प्रकट होते हैं और तब उनकी बाल्य लीला कैशोर पौगंड लीला यह रश्मय लीला है तब अनुभूति होती है। यहाँ पर उसको वर्णन कर रहे हैं कि बहुत से प्रमाण हैं, किसी ने 4 प्रमाण माने, किसी ने केवल 3 प्रमाण माने, किसी ने 10 प्रमाण माने, सभी ने माने, किंतु शब्द प्रमाण के अतिरिक्त और कोई भी प्रमाण अपराधिक संबंध में कुछ भी काम नहीं कर सकते। कोई भी लौकिक प्रमाण हो, आस्त प्रमाण हो, और भी जितने भी प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान सत्ता अर्थ अस्तित्व अभाव उपलब्धि ये दस है, किंतु इसमें से केवल शब्द प्रमाण केवल प्रमाण है, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा में है अपौरुषेय प्रमाण। भगवान के द्वारा ये प्रकृतिक प्रमाण है, उनके स्वास्थ्य भेद पुराण उपनिषद गीता भागवत ये प्रमाण देखो इसमें बतलाएंगे। तो कारण है स्तुति वेद ही एकमात्र परमात्म के संबंध में एकमात्र प्रमाण और कोई प्रमाण काम नहीं करता। तैत्तरीय उपनिषद के द्वितीय पंक्ति में पंचम अनुवाद में यह कहा गया है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, तात्पर्य क्या है? ब्रह्म आनंदमय पुरुष का आश्रय या उसकी प्रतिष्ठा है, अर्थात ब्रह्म श्रेष्ठ है और आनंदमय पुरुष श्रेष्ठ है, उसका भी आश्रय ब्रह्म है ये बताया गया। और फिर उसी में उपनिषद के सातवें अनुवाद के द्वितीय अंश में कहा रसो वैश्य रसन दिए वाय लब्धानंति भवति, भगवान रसस्व तो रसस्वरूप ही नहीं क्या है, रस स्वरूप होने पर भी रसमय भी है, स्वयं रस भी है रसिक भी है, रसिक जिनको प्राप्त करके जीव आनंदी हो जाता है तत् आनंद से यार तत्व ही परास्त तत्व याद के तत्व। इस स्थिति में अब ये कहा गया ब्रह्म से भी रस तत्व या रसिक तत्व वह तत्व क्या है, रसिक शेखर भगवान कृष्ण, क्योंकि श्रीमद्भागवत में उनको 12 रसों का विषय बतलाया गया है, मल्लानाम पठनी नृणाम नरवर चेते नाम मुखरो मुत्तुनाम गोपालनाम सजनो अशतान चतुर्भुजान स्वस्ता पितृशिशु मृत्यु गोपते विराटिकां सत्समय परमयोगिनां विषयनां पदे प्रदातो ब्रह्म। जिस समय कृष्ण बलदेव जी के साथ में बलदेव जी के रंग भूमि में प्रवेश किया उस समय कंस के जो योद्धा थे महाबल चारों मुष्टिक इत्यादि जिनको कृष्ण वज्र से भी अधिक कठोर शरीर वाले वो चढ़ गए, साधारण मनुष्यों ने नरपुरुष के रूप में देखा, स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में देखा, गोपों ने अपने बंधु के रूप में देखा, राजाओं को दंड वाले कठोर शासक के रूप में, माता पिता को पुत्र के रूप में, कंस को मृत्यु के रूप में, अज्ञानियों को साधारण बालक के रूप में, योगियों को प्रत्यक्ष रूप के रूप में और ज्ञातियों को परम देवता के रूप में, सभी ने अपने अपने भाव के अनुरूप रौद्र अद्भुत श्रृंगार सप्त हास्य वीर वात्सल्य करुण भयानक विभत स्थान दास स्वरूप। इसलिए कृष्ण ही रसद स्वरूप। इसी श्लोक के द्वारा सर्व वेदांत सार कृष्ण प्रमाण शिरोमणि श्रीमद भागवत में श्री कृष्ण को ही रसद स्वरूप दिए गए। समस्त जितने प्रकार के प्रमाण हैं वेद से होने पर भी उनका सार श्रीमद भागवत ये सब प्रमाण शिरोमणि में अमूल प्रमाण है। तो वो कहते हैं कि कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा मैं ब्रह्म की माने क्या नहीं लेगा तो ब्रह्म क्या है ब्रह्मांग की ज्योति है ब्रह्मांग की ज्योति है इसलिए यदि अंग ही नहीं कहा अंग ही नहीं रही तो फिर ज्योति कहां से इस वाक्य के द्वारा भगवान कृष्ण ने अपने को ब्रह्म की प्रतिष्ठा और आत्मस्वस्थ कहा। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है ब्रजेंद्र श्याम चंद्र जी कृष्ण परात्मा प्रशस्तर ब्रजेंद्र ने उनकी पाल पौ पाल और किशोर ये यहां से निर्दिष्ट स्वयं भगवान कृष्ण विशुद्ध करता अपने नाम रूप गुण लीला और विग्रह से सत्य का भाव देखिए वात्सल्य का भाव रस स्वरूप किस प्रकार अनुभूत किसने किया कथाओं ने किया भैया ने सोना ने किया गुलाब खो रहे हैं अंग में कम खो रहा प्रेम हो रहा तंग से कुछ यह रस कथाओं ने एक मिनट नहीं देखा पहले मैं जाऊंगा पहले मैं इनके पास इस तरह से और गोपियों की तो बात नहीं तो वे अपनी शिक्षा से सबों के हृदय में उनके समय नेत्र मन की शादी में पहुंचे चेष्टा से नहीं होगा हाँ चेष्टा का परिश्रम भगवान की कृपा जरूर किया नव इंसान का
continuing from the last reading of Srimad Bhagavatam, we were discussing that Sri Krishna Chaitanya Thakur has said before Sri Chaitanya Mahaprabhu there was bhakti but no rasa sura bhakti. Bhakti full of rasa. Therefore, Sri Rupa Goswami was completely empowered by Sri Chaitanya Mahaprabhu to understand the internal mind, heart, desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Rupa Goswami only established in this world. Therefore, without the mercy of Sri Rupa Goswami, there is no possibility of attainment of bhakti, what you speak of, that's the bhakti. Therefore, Sri Krishna Chaitanya Thakur is establishing here that Krishna is Swayambhu. It is only by his Swaichcha Kripa, only by his independent resolve, his independent mercy, his own mercy, that the devotee can understand and realize and taste the name, form, qualities and pastimes of the Supreme Lord. Only when Krishna empowers the heart of a devotee, then that devotee can understand him. Therefore, which way should we understand or realize Krishna's Balaya, his baby pastimes, his Pramanda and his Kishore pastimes. Therefore, we have to come with some type of evidence, some Pramanda. Some people accept three types of evidence, some four, and some accept 10 types of evidence. Like Asa, Pratyaksha, Anuman, Abhav, and Pravatya. But finally, the only Pramanda or evidence which can establish transcendental reality is Sattva Pramanda. or just a transcendental sound. Because this Satyavan, or the Supreme Lord in the form of sound, is manifested directly by the Supreme Lord Himself. In fact, the Puranas, the Shastras, the Upanishads are the breathing of the Supreme Lord, His breath. Therefore, of all different types of evidence, Shruti Shastra is the topmost. Therefore, some question comes. Then, in this next bit, Brahma Krishna Pratishtha, some question comes, which is the superior tattva, Krishna's Angakanti, which is the leadership from, or Parabrahma Krishna Himself. So it must be understood that Krishna Himself is Swayam Bhagavan, because that Angakanti, that jyoti, is Asayam. It's dependent upon His existence from Krishna Himself. If there's no Krishna, how there can be any leadership from, it's quite impossible. Therefore, Krishna is the only Swatantra Tattva. He is completely independent, and even that aspect of leadership from the universal aspect of Krishna is dependent upon its existence, upon Krishna's existence. Therefore, the Upanishads have said, Rasa Vaisha. That Supreme Lord, not only is He Ras, not only is He Rasarup, full of nectar, but He is also Ras itself. He is both Ras and Rasik. He is both enjoyer and to be the object to be tasted. Both things are there. He is Ananda and Anandamoya, both. Therefore, the Upanishads say, by attaining Him, everything is attained. Therefore, the conclusion of the Srimad Bhagavatam is that Rasik Shekhar, that supreme enjoyer personality, is only Krishna Himself. And that is evidence is given in the Srimad Bhagavatam. All the Vedas have established Krishna as Rasa Swarup, and that is the topmost evidence is given in the Srimad Bhagavatam. Because the Srimad Bhagavatam is the essence of all the Vedic literature. Therefore, Malanam Asanam Vedinam Nanamaram Sriyam Swaro Vartimam Gopanam Swajanam. There are 12 rasas there. Therefore, this is evidence that Krishna is Rasa Vaisa. He is Rasik Shekhar because He is the object of all those 12 rasas. He is the Visaya Vigraha, the taster of those 12 rasas. What are they? When Sri Krishna Balamji entered into the wrestling arena of Kamsmaraj, then the five primary rasas and the secondary rasas, which bring 12 in total, were all tasted by Krishna at that time. Sriyam Swaramatimam, the lady saw Krishna as Cupid. Gopanam Swadhanam, the friend of Krishna saw Krishna as their friend. The ordinary person saw Krishna like a Gopala, like a cowboy. Vrishinam Devata, the Vrishni saw Krishna as their worshipful deity. Kams Maharaj, he saw Krishna as death. The wrestlers, Chara Musik, saw Krishna like a thunderbolt. The yogis saw Krishna, Yoginam Paratapun. The yogis saw Krishna as Paratapa. The unintelligent saw Krishna like the universal form. In this way, 12 things were there. And Krishna tasted all those, therefore this is evidence he is Rasik Shekhar, Rasa Vaisa. Therefore his pastimes are revealed by Sudha Sattva Potency. They are completely non-material. Therefore, the Srimad Bhagavatam gives evidence that Rasik Shekhar Krishna can be tasted, he can be seen, he can be experienced. How Srimad Bhagavatam tasted in Bhaktavira? She saw that Rasa Swarup Krishna weeping, like we hear this morning, crying, long, taking long breaths. The Sakya, they also experienced that Rasa Swarup Paramatma. How? I will touch him first. I will touch him first. Therefore, the conclusion is that Krishna cannot be realized by our own efforts only. His mercy must be there. And we should perform our efforts in order to achieve that mercy.
संक्षेप में दस प्रमाणों को है, एक्सेप्ट करना, आंख कान नाक जीवा त्वचा, इनसे पांच इंद्रियों के जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण करते हैं। किंतु कभी 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 मन स्वभिष्ट आदि पागल हो जाए, रोगग्रस्त हो जाए, कभी कभी रस्सी को देखकर के मालूम होता है कि सांप है, कभी कभी सीप देखकर के रजत का अनुमान हो सकता है। इसलिए ये भी बात जुड़े हैं, अनुमान अनुमान प्रमाण नहीं। कभी धुआं देखने से मालूम होता है कि आग है, किंतु धुआं बढ़ता से आग बंद हो जाने पर भी धुआं हो सकता है तो वहां पर आग नहीं भी हो सकती है। आत्म प्रमाण नाना प्रकार के ऋषि लोग नाना प्रकार के हैं, उनके मत भी विभिन्न है, इसलिए आत्म प्रमाण भी निर्धारित नहीं है। उपमा एक वस्तु को जैसे गधा घोड़ा एक समान है किंतु होने पर भी एक नहीं है, जैसे नमक और शिक्करी दोनों सफेद है किंतु दोनों एक नहीं। अर्थापत्ति एक आदमी मोटा ताजा है खूब है किंतु दिन में खाता नहीं, अनुमान लगा लो क्या खाता है, ये भी निर्भर करके नहीं। अभाव कोई वस्तु नेत्र और कान इंद्रियों से निकट न रहने पर उसकी उपलब्धि नहीं होती, अभाव है, ये भी प्रमाण नहीं है। क्योंकि एक दीवार है तो ये आंख के पार वाली चीज को नहीं देख सकती है, वो प्रमाण नहीं हो सकता। संभव हजारों की संख्या में सौ अंतर्भुक्त है, बातचीत है, बुद्धि प्रकार के जो संभावना करते उसे संभव प्रमाण करते, और इसकी इतिहास चेष्टा हम बुजुर्गों से निर्वाचन कर सब में कुछ न कुछ दोष है, किंतु सब अवगौ भगवान के विश्वास में निकला है या भगवान ने प्राण गीता में किया है, भागवत में किया है, ये आत्मवचन भी इसको कहते हैं। साधारण से विष्णु ही जो रचनाएं होती हैं वो पौ से, किंतु भगवान के विश्वास से निकली हुई कही हुई बातें केवल वही एकमात्र प्रमाण है। शास्त्र कौन प्रमाण है, हरी जन शाम तथा मूल रामायण महाभारत पंचरात्र भागवत और उसके अनुभव जो शास्त्र है ये सब प्रमाण है। कुछ लोग कहते हैं बुद्ध देव तो भगवान है तो उनकी बात प्रमाणित होगी कि नहीं, नहीं जी दूसरा नहीं कर सकते, क्यों कि बुद्ध देव ईश्वर है जो शास्त्र में लिखा गया है, उसमें ये भी लिखा है कि बच्चों को मोहन करने के लिए आए, इसलिए उनके वचन प्रमाण में नहीं, तो देवताओं को मोहन कर, इसीलिए भारत वर्ष में बहुत मत नहीं चला, उनको खदेड़ दिया गया कहा है। इसीलिए चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा कि सूचना प्रमाण श्रेष्ठ है और उनमें भी श्रीमद भागवत अमर निर्मल श्रेष्ठ प्रमाण है। उसी के आधार पर हम कृष्ण लीला का वर्णन करें, भक्ति का वर्णन करें, यही प्रमाण से रहेंगे। ये परब्रह्म कृष्ण अपने भक्तों का विनोदन करने के लिए जगत से आए, राजधानी धर्मचला अभ्यस्थान अधर्म से तदा स्थान जाने परिक्रणाय साधु नाम विनाशाय कृष्ण का या बाहिका ये विष्णु के द्वारा कराते हैं, उनके अंगों में विष्णु रहते हैं, उनके द्वारा असुरों का संहार इत्यादि कार्य कर रहे हैं। और स्वयं उनका क्या है, भक्ता नाम तिरोधार है। और भक्तों में भी से कौन भक्त हैं, प्रतिभाषी उनने भी चतुर्दा मैया इत्यादि सफा लोग उसमें भी गोपियां उनने भी श्रीमती जानसा भाभियों को करने के लिए स्वयं उनका कार्य जगाश इत्यादि और अष्टकादि लीला में जिनका चिंतन किया जाता है वो उनका अपना कार्य और बाकी उनके शरीर में जो विष्णु तत्व हैं उनके द्वारा उनका श्रृंगार और नैमित्तिक और उसकी क्रियाएं भक्तों को मारने से उनका कोई संबंध नहीं। भक्ता नाम विनोदाय ये कहा और भक्त लोग उनको पहचान नहीं पाए, साधारण मनुष्य समझते कौन जरासम दुर्योधन कालजम ये सब भगवत विरोधी थे। ये लोग भगवान के को कृष्ण को भगवान के रूप में समझ नहीं पाए। दुर्योधन उनको बंदी बनाना चाहा और कृष्ण उसमें में प्रयास जिसम पिता में इत्यादि कर गए और क्षमा मंगवाया उनको अठारह बार आक्रमण किया है उनको मार डालना चाहे पंडित बात थे दो हाथ से दो हाथ और नकली लगा दिया और अपने पास मैं कृष्ण हूं मैं बाप चुके हूं भगवान ने उनको संता इस तरह एक दुष्ट असुर लोग उनको समझ नहीं सके। पिता ने तो लिखा है परिक्रणाए साधु नाम बिना साहब इसलिए अवतार का मूल कारण भक्तों का इस प्रकार के परिषदों में रसद स्वरूप रखा है क्यों रसी नहीं वे स्वयं रसराज और रसिक नहीं है एक ही रस नहीं बल्कि अखिल स्पष्ट एक रस अनेक रस अनेक रस माने भक्ति विनोद ठाकुर ने इसका वर्णन किया है बहुत सुना अनेक रस माने राधा जी और गोपियों का इसीलिए उनका साधन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में रूप बताया। लीला सूत ने कहा श्रृंगार रस सार सर्वस्व समस्त रसों का सार श्रृंगार रस प्रेम के देवता श्रृंगार रस में ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर राधा कांत जय देव गोस्वामी जी ने कहा सती श्याम सुंदर मूर्तिमान श्रृंगार रस आप कहते हैं रस श्रृंगार नाम है श्याम कृष्ण श्रृंगार रस का रंग कैसा है श्याम रस इसलिए उसने कहा है श्याम रस तो श्याम संघो का अर्थात श्रृंगार श्रृंगार रस का वर्ण क्या है श्री कृष्ण उसके देवता है श्री स्मृति कृष्ण का जदुकुल में और राम का रघुकुल में स्वेच्छा पूर्वक जैसे अवतीर्ण होते हैं उसी प्रकार अपने भक्तों के हृदय में मन में आंखों में सब कृष्ण का है।
Krishna Chakravani Thakur is now quickly going through the 10 types of pramanas, evidence. Pratyaksha, that knowledge with which we attain by the senses. We have 5 jnanendriyas, 5 knowledge acquiring senses, eyes, tongue, nose, ears, touch. Therefore, knowledge that we acquire by these senses is called pratyaksha. But there may be some faultiness, for example, someone who is completely mad, or someone who is afflicted by some disturbance, that I might see, oh, a rock with that, but I might see there's a snake, or an oyster shell, I might see a real silver, therefore some fault may be there. Anuman means inference. Generally, where there's smoke, there must be fire. But sometimes the fire may have been extinguished, but the smoke is there. Therefore, smoke is there, but there is no fire. Therefore, anuman or inference, there is some fault. Or, there's a fat person, that means he eats too much, but actually he only eats one time at night. He must be eating all day, but he is not, therefore some fault is there. Asa means nine, different rishis have different conclusions, or there are nine in number, but there is also some fault here and there, and all are contradicting each other. Upaman means to see one thing equal to another, like a donkey or a horse, or like in Janmashtami Abhishek, some salt or sugar may appear to be the same. Sambhavana means maybe, sambhava, maybe it's possible, therefore by mind you are speculating. And some others are hidden cash. Above, there is one wall, but what is behind that wall you cannot see because there is some lacking, some above in your senses. In this way, 10 types of ways of achieving a conclusion are given. Of these 9 have some fault. Therefore, the only pure and bona fide praman or evidence is Vedic Shastra, Aptavachan. That word spoken by Krishna, the Supreme Lord Himself, for example, Srimad Bhagavatam, or especially Sri Bhagavad Gita, or those words spoken by perfected sadhus, Aptavachan. In this, there is no fault. What is that Aptavachan? What is those Sapta Shruti, that perfect source of knowledge? The 4 Vedas, some Atma Vigra, Yajur Veda, the Mahabharata, the Puranas, and the Upanishads, especially Srimad Bhagavatam, and those conclusions and those scriptures which are in accordance or following the conclusion of those Sapta Brahman, those Shrutis, then that can also be accepted. For example, these 9 Praman, sometimes they may come in line with Shastra, then we accept also. Then question may be there, well, what about Buddha? Buddhaji, his incarnation of Bhagavan, because what he speaks also must be Sapta Praman. Therefore, should we accept the words of Buddha? Then Sri Jiva Goswami is saying no, because Buddha spoke with a desire to cheat the demons. Therefore we cannot accept, even though it's coming directly from Bhagavan. Therefore we accept Buddha, but not the words of Buddha. Therefore, for all these reasons, Buddhists were pushed out of India, and now they went outside of India, to places like Nepal and Thailand. Therefore, conclusion, this Shruti Praman, or this Shastra, is the best. And of all Shastras, Srimad Bhagavatam is the ultimate conclusion. Therefore, if we want to understand what is Bhakti and what is Bhagavan, we must hear from the Srimad Bhagavatam especially. For what reason Krishna appears in this world? The Bhagavad Gita, Krishna says, Yada Yada Hidamasya Gnani Manasya Bharata, also Paritanayam Sadhanam Vinasaya Krishnadam Dharmasam Stavadata Vidya Kuyabayame. Are these the real reasons for Krishna's appearance? Actually, Krishna has nothing to do. Krishna himself, Swami Bhagavan, has nothing to do with the activities of killing demons and protecting sadhus and all the rest of it, establishing Dharma. Vishnu and the other incarnations inside Krishna's body, they perform all those functions. But Krishna himself has nothing to do with that. Therefore, the real reason for the appearance of Swami Bhagavan, Sri Krishna, and Madhvata Vinodaya, Krishna comes to give happiness to the devotees. Which devotees? Especially the Brijvasis. And of all the Brijvasis, especially the gopis, headed by Srimati Radhika. Therefore, many demons also had darshan of Krishna, Kamsa, Jarasandha, Kalyavam, but because they were Bhagavan Virodhi against Krishna, they could not taste that rasa, that nectar inside him. Duryodhana tried to bind him, But Krishna reveals his great absolute, his huge universal form, and Duryodhana begged forgiveness from him. Duryodhana tried 18 times to crush Krishna. He had an attempt many times to kill him, that he could not taste Krishna. Pondratji, he made two false arms and said, "I am the real Vasudev, I am the real Bhagavan." Therefore Krishna killed him also, liberated him, sorry. Therefore, all these ideas are there to show that Krishna is Rasaraj and he is also Rasik. Therefore, Ekras is there and Anekras is there. Anekras means, Thakur Bhaktivinoda said, Anekras means Ashray Jatya, means the devotees, especially Srimati Radhika. Therefore, Krishna himself, Shyam Sundar, he is the Ishadev and the Devata and the enjoyer of this Srinivas. Therefore, he is Shyam, the complexion of Srinivas is Shyam himself. Therefore, Krishna is of that complexion. King Rasa Siddhisthana Savadaha. Therefore, without the mercy of Radharani, how you can taste Krishna?
आगामी काल तथा निधुवन राधारमण गोपलानंद गोपी टुमारो आफ्टर ब्रेकफास्ट
Hare Krishna. Many devotees, they get some trouble with a throat, cough, or flu.